हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आप नीचे झुकते हैं कि मैं अपने लिए किसी और को ढूंढ लूँ जो बात बात पर मुझ पर शक ना करे और मेरी बात भी माने। सोच लीजिए, बहुत से लड़के हैं यहाँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो किसी और को जाकर चूम लूँगी, फिर ऐसे ही आंखें फाड़े देखते रहिएगा आप मुझे। प्रीति गुस्से में भुनभुनाई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए आखिरी की बात बोलकर खामोश हो गई। उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर आयुष्मान शॉक्ड रह गया और अवाक सा उसे देखता ही रहा। प्रीति ने उसे घूरते हुए आंखों से ही सवाल किया। उसकी धमकी याद करते हुए आयुष्मान ने रिस्क ना लेना ही ठीक समझा और झट से नीचे झुक गया। प्रीति ने फट से अपनी हथेली और उंगलियों से उसके दोनों गालों को छू दिया, फिर एक कदम पीछे लेते हुए लबों पर गहरी संतुष्टि भरी विजयी मुस्कान सजाकर आयुष्मान को देखने लगी, जिसके दोनों गालों पर हल्दी लग चुकी थी। आयुष्मान अचानक ये सब होने से चौंक गया और आंखें फाड़े प्रीति को देखने लगा। प्रीति उसे देखकर मुस्कुरा उठी। आपके कोरे कोरे गाल अच्छे नहीं लग रहे थे, अब बढ़िया लग रहे हैं आप। प्रीति की बात खत्म होते ही आयुष्मान ने अपने गाल को अपनी हथेली से छुआ तो थोड़ी सी हल्दी उसकी उंगलियों पर लग गई। अब आयुष्मान को समझ आया कि आखिर प्रीति के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था। इसके साथ ही आयुष्मान के चेहरे के भाव बदल गए। उसने आंखें छोटी छोटी करके प्रीति को घूरते हुए कहा, तो इसीलिए इतना नाटक कर रही थी तुम, ताकि मेरे साफ सुथरे गालों को गंदा कर सको। खुद पर इल्जाम लगते हुए प्रीति ने झट से अपने लिए स्टैंड लिया। गंदे कहाँ किए हैं, मैंने तो आपके गालों को सुंदर बना दिया है। आपको नहीं पता हल्दी हमारी स्किन के लिए कितनी फायदेमंद होती है। देखना, अब आपके गाल सूरज जैसे दमकने लगेंगे। अपनी हरकत पर सफाई पेश करते हुए और खुद को सही साबित करते हुए प्रीति बेफिक्री से मुस्कुरा उठी। वहीं उसकी बातें सुनकर आयुष्मान की बौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। अच्छा, तो हल्दी इतनी ही फायदेमंद होती है तो सिर्फ मैं ही क्यों सूरज की तरह दमकूंगा? तुम्हें भी तो चांद जैसे चमकना चाहिए। जरा पकड़ो अर्श को, फिर मैं तुम्हें अच्छे से चमकाता हूँ। मैं क्यों पकड़ूं उसे, ताकि आप मुझे हल्दी लगा सकें? इतनी भी बेवकूफ नहीं मैं कि खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं। आपका बेटा है तो संभालिए खुद ही उसे, मैं तो चली। प्रीति ने इतराते हुए अपने गालों पर आती लटों को होठों को टेढ़ा करके फूंक मारकर पीछे किया और लबों पर कुटिल मुस्कान सजाए जैसे ही जाने को पलटी, उसके कानों में आयुष्मान की गुस्से भरी आवाज पड़ी, दैट्स नॉट फेयर प्रीति, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बहुत शरारत सूझ रही है ना तुम्हें? तुम बस देखो कि तुम्हारी इस हरकत का बदला मैं कैसे लेता हूँ तुमसे। आई स्वेयर, उसके बाद तुम दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करोगी मेरे साथ। प्रीति आयुष्मान की बात सुनकर उसकी तरफ पलट गई और लबों पर मुस्कान सजाए बड़ी ही अदा से बोली, मुझे आपकी धमकी से जरा भी डर नहीं लगा। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब आपको जो करना होगा आप शौक से कीजिएगा, पर आप कुछ करेंगे तो तब ना, जब मैं आपके हाथ लगूंगी। आप बस ख्वाब देखिए मुझसे बदला लेने का, क्योंकि हकीकत में तो मैं आपके हाथ आने से रही। प्रीति ने खुद पर इतराते हुए जवाब दिया और शरारती मुस्कान लबों पर सजाते हुए अपनी दाई आंख दबा दी, फिर पलटकर मटकते हुए गरिमा जी के पास चली आई। आयुष्मान ने पॉकेट से हैंकी निकालकर अपने गालों को साफ किया और गुस्से से घूरकर प्रीति को देखा। वहीं प्रीति उसे चिढ़ाते हुए गरिमा जी से लिपट गई। उन्होंने भी प्यार से उसके गाल को छूकर चूम लिया। प्रीति को यूं हंसते मुस्कुराते देखकर उन्हें बेहद सुकून मिलता था। दूर बैठा रौनक भी उन दोनों की नोकझोंक, प्रीति की शरारत और आयुष्मान का गुस्सा देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में लड़के लड़की को कमरे में लेकर जाया गया, जहां दोनों नहाकर तैयार हुए। फिर सब लॉबी में नाश्ता किया। प्रीति गरिमा जी और मानसी के साथ ही रही। आयुष्मान ने ही पहले अर्श को दलिया खिलाया, फिर खुद खाना खाया। आगे का आधा दिन कब निकला किसी को पता ही नहीं चला। प्रीति एक बार भी अकेले आयुष्मान के हाथ नहीं लगी। शाम हुई तो श्रेया और रौनक ने प्रीति को अपने पास बिठा लिया। आयुष्मान भी वही था। हंसी मजाक और बातें शुरू हुई। डिनर के बाद आयुष्मान अर्श को लेकर कमरे में चला गया, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। बाकी लोग भी खा पी कर आराम करने चले गए। प्रीति को रौनक और श्रेया ने जाने ही नहीं दिया। रात के करीब 10 बज रहे थे। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रूम में मौजूद आयुष्मान अपने बगल में लेटे अर्श के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देख रहा था। उसकी बेचैन निगाहों को बड़ी ही बेताबी से इंतजार था प्रीति का, पर वो आ ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और प्रीति ने कमरे में कदम रखा। कहाँ थी अब तक, इतनी देर कहाँ लगा दी? प्रीति पर नजर पड़ते ही आयुष्मान ने उस पर सवाल दाग दिया। प्रीति जो अभी एक दो कदम ही अंदर आई थी, आयुष्मान का सवाल सुनकर उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। उसने निगाहें उठाकर बेड पर तिरछे लेटे आयुष्मान को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, आपके दोस्तों ने साथ बिठाया हुआ था और आपके कॉलेज की किस्से कहानियां सुना रहे थे। अच्छा, चलो जाओ चेंज कर लो। प्रीति ने हामी भरी और अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। प्रीति सुबह वाली बात को अब पूरी तरह से भूल चुकी थी, पर आयुष्मान इतनी आसानी से कैसे उसे छोड़ सकता था? उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद हो चुका था तो हौले से बेड पर से उतरा और बेड के साइड के ड्रॉर से एक पॉलीथिन निकाल ली जिसमें हल्दी भरी थी और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। प्रीति हाथ मुंह धोकर चेंज करके जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, खाली बेड को देखकर चौंक गई। उसने पूरे कमरे में निगाहें घुमाई, पर आयुष्मान उसे कहीं नजर ही नहीं आया।
वहीं बाथरूम की दीवार से चिपक कर खड़ा आयुष्मान अब दबे पांव धीरे धीरे प्रीति की तरफ बढ़ने लगा। प्रीति अब भी खुद में उलझी हुई सी कमरे में चारों ओर अपनी निगाहें दौड़ाते हुए आयुष्मान को ढूंढ रही थी और सोच रही थी कि अर्श को अकेला छोड़कर वह इस वक्त कहाँ चला गया। अचानक ही किसी की चिपचिपी सी हथेलियों ने उसके दोनों गालों को एक साथ ही स्पर्श किया और हौले से उसके गाल को मसल लिया। प्रीति एक पल में उस स्पर्श को पहचान गई। वो तुरंत आयुष्मान की तरफ पलटी। आयुष्मान की नज़र उसके गोरे गोरे गालों पर ठहर गई जो अब पीले रंग में रंग चुके थे और वो मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था ना हिसाब बराबर होगा, अब हुआ हमारा हिसाब बराबर। प्रीति उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने झट से अपनी हथेली से बारी बारी अपने दोनों गालों को छूकर देखा तो उसके गाल हल्दी से सन चुके थे। ये देखते ही प्रीति के चेहरे के भाव बदल गए। प्रीति ने चिढ़कर आयुष्मान को देखा और गुस्से से उस पर भड़क उठी। ये क्या किया आपने, मैं अभी अभी हाथ मुंह धोकर आई थी ना। तो क्या, आयुष्मान ने बेफिक्री से बांह उछाली और विजयी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, मैंने भी नहाया हुआ था जब तुमने मुझे हल्दी लगाई थी और मैंने कहा था कि इतनी आसानी से तुम मुझसे बचकर नहीं निकल सकती, हिसाब बराबर जरूर होगा। तुमने मुझे हल्दी लगाई और मैंने तुम्हें, बात खत्म। आयुष्मान का जवाब सुनकर प्रीति कुछ पल गुस्से से जलती निगाहों से उसे घूरती रही, फिर पलटकर कोई जवाब ना देते हुए गुस्से में पैर पटकते हुए वापस बाथरूम में घुस गई। आयुष्मान के लबों पर से मुस्कान तो आज जाने का नाम नहीं ले रही थी, वो भी मुस्कुराकर उसके पीछे पीछे चला गया। प्रीति अपना चेहरा धो रही थी, आयुष्मान उसके बगल में खड़ा होकर हाथ धोने लगा।